आज की हमारी चर्चा का विषय है ध्यान यानी मेडिटेशन। हम में से ज्यादातर लोग ध्यान को ईश्वर से जुड़ने या मन को शांत करने का एक तरीका ही समझते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये असल में अपने आप का एक बेहतर संस्करण बनाने का एक शक्तिशाली वैज्ञानिक उपकरण भी हो सकता है। आज हम पूज्य गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों की गहराई में उतरेंगे, उनके मार्गदर्शन के अध्याय ध्यान योग का मर्म के जरिए। हमारा मकसद ये समझना है कि ध्यान केवल एक पूजा पद्धति नहीं बल्कि व्यक्तिगत परिवर्तन का एक विज्ञान कैसे है, एक ऐसी तकनीक जिससे कोई भी अपना भविष्य गढ़ सकता है।
बिल्कुल, और इसमें सबसे आकर्षक बात यह है ना कि पूज्य गुरुदेव ध्यान की जो पारंपरिक धारणा है उसे एक मनोवैज्ञानिक और आप कह सकते हैं व्यावहारिक ढांचे में रखते हैं। वो बताते हैं कि ध्यान का असली मर्म किसी बाहरी शक्ति की पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने ही सर्वश्रेष्ठ रूप को डिजाइन करने और फिर उसे हासिल करने की एक प्रक्रिया है।
तो चलिए इस विचार को परत दर परत खोलते हैं कि कैसे मन में बनाया गया सिर्फ एक चित्र हमारी असल जिंदगी को बदल सकता है।
अच्छा, तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। भक्त ध्यान करते हैं लेकिन ईश्वर का कोई एक असली फोटो तो है नहीं, तो फिर वो किस मूर्ति या छवि पर अपना मन लगाते हैं?
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह असल में एक मानसिक स्थापना है, एक काल्पनिक चित्र।
हाँ,
अगर ईश्वर की कोई एक ही असली मूर्ति होती तो दुनिया के सारे भक्त उसी का ध्यान करते, पर ऐसा तो नहीं है। हर कोई अपने मन में एक अलग कल्पना करता है।
बिल्कुल, और यहीं से ना एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है जो अक्सर अनीश्वरवादी या तर्कवादी लोग उठाते हैं
कि जब ये चित्र काल्पनिक ही है तो इस पर ध्यान लगाने से फायदा क्या?
एकदम सही कि भाई ये तो मन का एक वहम हुआ। इसी उलझन को सुलझाते हुए पूज्य गुरुदेव एक नया शब्द, एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं, ध्येय प्रतिमा।
ध्येय प्रतिमा?
हाँ, यानी एक आदर्श लक्ष्य की मूर्ति।
मतलब ये ईश्वर की मूर्ति नहीं है?
नहीं, ये उस आदर्श की प्रतिमा है जैसा हम खुद बनना चाहते हैं। ये हमारे अपने सबसे विकसित, सबसे उत्तम रूप की कल्पना है। ये एक तरह से ईश्वर को बाहर खोजने की बजाय अपने अंदर के सर्वेष्ठ की स्थापना करना है।
मुझे यहाँ पर वो सुनार वाला उदाहरण बहुत कमाल का लगा।
हाँ,
क्योंकि ये इस अमूर्त विचार को एकदम ठोस बना देता है। जैसे एक सुनार कोई गहना बनाने से पहले एक सांचा, एक डाई तैयार करता है और फिर उसमें पिघली हुई धातु डालकर मनचाहा आकार देता है। ये बताता है कि बिना एक ठोस डिजाइन के आप कुछ भी कीमती नहीं बना सकते, चाहे वो सोना हो या आपकी अपनी जिंदगी।
आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये एक तरह की आप कह सकती हैं मानसिक इंजीनियरिंग है। ये सांचा ही ध्येय प्रतिमा है। ये उन सभी गुणों का मिलाजुला रूप है जिन्हें हम अपने अंदर दिखाना चाहते हैं।
अच्छा, जैसे सुंदर, स्वस्थ, बलवान।
हाँ, बुद्धिमान, तेजस्वी, ये अपने भविष्य का एक मानसिक ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है।
और ये बात सिर्फ आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, ये बहुत दिलचस्प है। आज के दौर में जो टॉप एथलीट और बिजनेस लीडर्स जिसे विजुअलाइजेशन कहते हैं ना,
हाँ हाँ,
ये लगभग वही तकनीक है। वो मैच जीतने या कोई बड़ी डील पक्की करने से पहले उसे हजारों बार अपने मन में होते हुए देखते हैं, उसकी हर डिटेल को महसूस करते हैं।
एकदम सही, पूज्य गुरुदेव उसी वैज्ञानिक सिद्धांत को व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप जैसा बनना चाहते हैं पहले उसकी एक स्पष्ट, एक सजीव तस्वीर अपने मन में तो खड़ी कीजिए। बिना नक्शे के कोई इमारत बन ही नहीं सकती।
ये सांचा बनाने का विचार तो बहुत शक्तिशाली है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, सिर्फ एक मानसिक छवि बनाने से असल जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? आखिर इस तस्वीर में वो ताकत कहाँ से आएगी जो हमें असल में बदल सके?
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हमारी इच्छा शक्ति में छुपा है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस ध्येय प्रतिमा की शक्ति हमारी उन्नति की इच्छा की प्रबलता पर निर्भर करती है। अगर हमारी आगे बढ़ने की इच्छा कमजोर है, ढीली ढाली है, तो वो मानसिक चित्र भी धुंधला, अस्थिर और बेजान सा होगा। उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर इच्छा प्रबल है तो?
तो वो चित्र उतना ही स्पष्ट, सजीव, प्रकाशवान और स्थिर होगा। वो हमें अपनी ओर खींचेगा। ये तो बहुत जाना पहचाना एहसास है ना?
हाँ बिल्कुल।
जब किसी चीज को पाने की धुन सवार हो जाती है तो वो 2400 घंटे दिमाग में घूमती है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई परीक्षा हो या कोई बड़ा लक्ष्य, उसकी तस्वीर आंखों के सामने नाचती रहती है।
हाँ, जैसे एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका का ध्यान हर समय लगा रहता है, या किसी वैज्ञानिक को अपनी खोज की धुन लगी रहती है। उसकी इच्छा जितनी प्रबल होती है उतना ही वो लक्ष्य उसके करीब आता महसूस होता है।
बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ठीक वैसी ही लगन, वैसी ही दीवानगी अपने आदर्श के प्रति होनी चाहिए। सच्ची लगन से ही किसी वस्तु की प्राप्ति होती है। अगर कोई उन्नति चाहता है तो ये काम आधे अधूरे मन से या उदासीनता से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए दृढ़ विश्वास, सच्ची लगन और प्रेम भरी उत्सुकता चाहिए।
उन्होंने कोलंबस का उदाहरण भी दिया है।
हाँ,
वो भारत की खोज के लिए इतना व्याकुल था कि उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसे अटूट विश्वास था कि कहीं ना कहीं वो जमीन जरूर है। अगर वो बिना किसी तीव्र आकांक्षा के, ध्येय प्रतिमा के समुद्र में जहाज चलाता तो शायद कभी किनारे तक नहीं पहुंचता।
यही बात है, ये इच्छा ही उस मानसिक चित्र में जान फूंकती है। ये उसे एक बेजान तस्वीर से एक चुंबकीय शक्ति में बदल देती है, जो हमारे हर एक्शन, हर निर्णय को प्रभावित करने लगती है।
लेकिन इसमें खतरा भी तो है।
अगर
कोई सिर्फ सांसारिक उन्नति जैसे बहुत सारा पैसा, शोहरत या ताकत की ध्येय प्रतिमा बना ले, तो क्या ये उसे और ज्यादा भौतिकवादी और शायद स्वार्थी नहीं बना देगा? आध्यात्मिकता कहाँ है इसमें?
आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया, और यही पूज्य गुरुदेव के दर्शन की खूबसूरती है कि वो इस संभावित खतरे का भी समाधान देते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी गहरे मनोविज्ञान के आधार पर ही ईश्वर की सुंदर मूर्तियों का विधान बनाया था, ताकि एक प्रेरक और सात्विक आदर्श हमेशा सामने रहे।
तो गुरुदेव इसका क्या हल बताते हैं?
वो एक बहुत सुंदर समाधान देते हैं। वो कहते हैं कि इस ध्येय प्रतिमा के साथ ईश्वर का कोई पवित्र नाम जोड़ दो। इससे आपका लक्ष्य केवल भौतिक और सांसारिक उन्नति तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ आध्यात्मिक और सात्विक गुण भी अपने आप जुड़ जाएंगे।
अच्छा, तो ये एक तरह का मॉरल कंपास या नैतिक दिशा सूचक जोड़ने जैसा है।
हाँ बिल्कुल,
ताकि हमारी महत्वाकांक्षा सही रास्ते पर रहे और हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके भले के लिए काम करें। ये उस शक्तिशाली इंजन को सही दिशा देने जैसा है।
बिल्कुल, इस तरह ये सांचा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उन्नतियों के लिए काम करता है। ये एक संतुलित विकास का रास्ता है।
और इसी वजह से उनका दृष्टिकोण इतना क्रांतिकारी हो जाता है, खासकर अनीश्वरवादियों के लिए।
हाँ, वो जो कहते हैं, अच्छा बाबा, उसे ईश्वर को मत मानो, पर अपना उत्तम भविष्य ढालने वाले सांचे को तो मानो। और फिर वो एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं, अच्छा ठहरो, कृष्ण को छोड़ो, हम तुम्हें ही कृष्ण बना देते हैं। ये तो ध्यान की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। ये ध्यान को किसी बाहरी सत्ता से हटाकर पूरी तरह स्वयं पर केंद्रित कर देता है।
सही कहा, ये ध्यान को व्यक्तिगत विकास का एक सार्वभौमिक उपकरण बना देता है, जो किसी की आस्था या अनास्था पर निर्भर नहीं करता।
हर व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक, और उसके लिए एक आदर्श की रूपरेखा बनाना अनिवार्य है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सबके लिए काम करता है।
तो इसकी व्यावहारिक प्रक्रिया क्या है? इसे असल में किया कैसे जाए? क्योंकि ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। सिर्फ अच्छा अच्छा सोचने से तो कुछ नहीं होता।
गुरुदेव एक बहुत सीधा साधा अभ्यास बताते हैं, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। वे कहते हैं, एकांत में शांति से बैठें, पालथी मारकर अपनी सूरत को दर्पण में देखें। पहले तो हमें अपनी असलियत दिखेगी, जो भी हम हैं, जैसा भी हमारा चेहरा है, जो भी कमियां हैं। फिर हमें उस छवि पर मानसिक रूप से वो सारे गुण ओढ़ाने हैं जो हम पाना चाहते हैं। ये एक मानसिक सर्जरी की तरह है।
मतलब अपने वर्तमान शरीर की सारी कमियों को हटाकर एक आदर्श शरीर की कल्पना करना।
हाँ, लेकिन सिर्फ शारीरिक ही नहीं, जैसे गोरा रंग, भरा हुआ गुलाबी चेहरा, चमकदार आंखें, ये तो हुए शारीरिक गुण। इसके साथ ही मानसिक और आध्यात्मिक गुण भी जोड़ने हैं, जैसे चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में करुणा, बुद्धि का तेज, होठों पर मुस्कान। अपनी उस छवि को हर उस उत्तम गुण से सजा डालो जिसकी आप कामना करते हैं। बस यही आपकी ध्येय प्रतिमा हो गई।
यही आप ईश्वर की तस्वीर हो गई।
हाँ,
और फिर इसी का ध्यान करो।
पर क्या एक परफेक्ट ध्येय प्रतिमा बनाने का दबाव इंसान को और ज्यादा चिंतित या हीन भावना से ग्रस्त नहीं कर सकता कि मैं तो ऐसा कभी बन ही नहीं सकता, मुझ में तो इतनी कमियां हैं?
ये एक बहुत व्यावहारिक चिंता है, लेकिन यहां ये समझना जरूरी है कि ये ध्येय प्रतिमा हमारे आज के स्वरूप पर कोई फैसला नहीं सुना रही। ये तो भविष्य का एक लक्ष्य है, एक दिशा है। इसका मकसद खुद को कोसना नहीं बल्कि प्रेरित करना है। और सबसे जरूरी बात जो पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं कि ये केवल शुरुआत है, ये आरंभिक सीढ़ी है।
मतलब सिर्फ ध्यान करने से कुछ नहीं होगा?
सच कहूं तो सबसे मुश्किल काम ध्यान के बाद शुरू होता है। आदर्श का मानसिक निर्माण हो जाने के बाद अपने शरीर और मन की सारी शक्तियों को लगाकर उसे हकीकत में बदलने के लिए जुट जाना होता है।
अच्छा।
अपनी उस आदर्श छवि के हिसाब से रोज मेहनत करना, अनुशासन रखना, वहीं पर असली परीक्षा होती है। सिर्फ आंख बंद करके सोचने से कायापलट नहीं होती, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ध्यान उस कर्म को सही दिशा और ऊर्जा देता है।
बिल्कुल।
तो इसी वजह से हमें कई बार ऐसे तथाकथित भक्त दिखते हैं जो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन उनके जीवन में आलस्य, दरिद्रता या दुर्गुण भरे होते हैं, जबकि वो तो रोज ईश्वर का ध्यान करते हैं।
बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव इसे भक्ति की झूठी विडंबना कहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आदर्श को पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। उन्होंने ध्यान को एक निष्क्रिय क्रिया मान लिया है। उनका भगतपना शायद पेट पालने का या समाज में सम्मान पाने का एक जरिया मात्र है। सच्चा ध्यान योगी तो अपनी उस ध्येय प्रतिमा में इतना डूब जाता है कि उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है।
या यूं कहें कि वो इंसान बस उसी आदर्श का हिस्सा बन जाना चाहता है।
हाँ।
उसके अंदर एक बेचैनी, एक लगन पैदा हो जाती है कि मुझे ऐसा ही बनना है।
एकदम सही। जब कोई अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित हो जाता है तो उसके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा होता है। उसका सोचने का, काम करने का हर तरीका बदल जाता है। ये सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं बल्कि एक अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसा जीवन का लक्ष्य निश्चित हो जाता है, शरीर और मन के कार्य भी उसी के अनुरूप दिखाई देने लगते हैं। आलस्य और टालमटोल के लिए कोई जगह ही नहीं बचती।
तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार ध्यान योग कोई निष्क्रिय या रहस्यमय क्रिया नहीं बल्कि आत्मनिर्माण का एक सक्रिय और वैज्ञानिक तरीका है। यह अपनी ध्येय प्रतिमा यानी अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप का एक स्पष्ट और शक्तिशाली मानसिक चित्र बनाने और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए पूरी लगन से जुट जाने की कला है।
इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि ये विधि हर किसी के लिए है, चाहे वो ईश्वर को मानता हो या ना मानता हो। ये मनोविज्ञान का एक ऐसा सिद्धांत है जो कल्प वृक्ष के समान हमारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला सिद्ध हो सकता है। ये अपने जीवन का नक्शा खुद बनाने जैसा है और फिर उस नक्शे के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरी जान लगा देने की प्रक्रिया है।
ये चर्चा एक बहुत दिलचस्प सवाल पर आकर रुकती है जिस पर सोचा जा सकता है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी छवि को उत्तम गुणों से सजाने की बात कही। अगर आज हम सभी को अपनी अपनी ध्येय प्रतिमा बनानी हो तो उसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण हम कौन सा जोड़ना चाहेंगे और कौन सा एक अवगुण है जिसे हम सबसे पहले हटाना चाहेंगे?